ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969, दूसरी मुरली है। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। तीसरा पॉइंट है निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। बाबा कहते हैं निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। जैसे आत्मा की मुख्य धारणा है निरहंकारी, इसमें भी सर्वस्व त्याग करेंगे तो निरहंकारी बन जाएंगे। जब तक आपके पास बुद्धि में कुछ है तब तक आपके पास अहंकार है, आप निरहंकारी नहीं बने हैं। कुछ भी आपके बुद्धि में, लौकिक चीजें हो, वस्तुएं हो, देह का भान हो, आपकी कला हो, आपके गुण हो, आपकी बुद्धि में अगर कुछ है तो उसी से आपको अहंकार आता है। मनुष्य के पास जो होता है उसी चीज का उसे अहंकार होता है। जो उसके पास नहीं है उसका अहंकार उसे कभी नहीं होता। इसलिए अहंकार का मुख्य कारण आपके बुद्धि में आपने जो इकट्ठा किया हुआ सब माल है। सब माल, उसमें आपके बिलीफ सिस्टम भी आएंगे, आपकी पद पोजीशन, आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, हर एक चीज उसमें आ जाएगी। क्योंकि आपको लगता है कि आप ये हो, आपके रिश्ते नाते जो कुछ आपने बुद्धि में पकड़ा है उन सभी को लेकर आप अहंकार जताते हो। आप जिसमें एक्सपर्ट हो यह आपको लगता है, उस बात का भी आपके पास अहंकार है, आप ना चाहते हुए भी। इसलिए आप सोचो और समझो कि आपकी बुद्धि में आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, इसे समझो आप, फिर आपको पता चलेगा कि सच में हम अहंकार से भरे हुए हैं। निरअहंकारी बनना यह कोई मासी का घर नहीं है, यह कोई खेल की बात नहीं है, उसे समर्पण ही चाहिए। इसलिए अपनी बुद्धि को चेक करो, हर एक वो छोटी सी छोटी बात जिस पर आप डटे हो वो आपका अहंकार है। हर एक छोटी से छोटी बात जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम बाहर निकलता है वो आपका अहंकार है। ये सब अहंकार की बातें हैं। अगर आप सर्वस्व त्याग कर देंगे तो निरअहंकारी बन जाएंगे, फिर जीवन बड़ी सुंदर होगी। फिर ऐसे लगेगा कि ईश्वर मेरा है, बाबा मेरा है और यह सारी सृष्टि मेरी। फिर आपको अनुभव होगा पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। अपने को चेक करना, सर्वस्व त्यागी कितना बने हैं? आपने सुना है, जो आपने त्याग नहीं किया वही आपका पतन करेगा, जो आपने बुद्धि में पकड़ के रखा है वही आपका पतन करेगा। अभी पतन की ओर क्यों जाए जब उत्थान का समय चल रहा है? तो त्याग दो सबको। यह भी सुना है कि देना कुछ नहीं, दान धर्म करने की बात नहीं है, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, बस समझ की बात है कि जो कुछ है बाबा का है, ईश्वर का है, बुद्धि से समझ की बात है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो अपने त्याग को चेक करो, खान पान का त्याग, धारणाओं का त्याग। यह त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, पर बुद्धि से जिसे पकड़ा है उसे त्याग करना, यही पुरुषार्थ है, यही सबसे बड़ी बात है। सर्वस्व त्याग, फिर सुख मिलेगा, फिर शांति मिलेगी। आपको अशांत कौन करता है? जो आपकी बुद्धि में है। बाबा है तो वो शांति देगा, बाबा छोड़ के जो कुछ बुद्धि में है वो सब आपको अशांत करेगा, परेशान वही करेगा, दुखी वही करेगा जो आपकी बुद्धि में बैठा है। मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बुद्धि में क्यों पकड़ के रखें, क्या साथ लाया था जो बुद्धि में पकड़ के आपके साथ जाएगा? जो कुछ लिया यही से लिया, जो दिया यही दिया, तो जो आपको मिला है इस्तेमाल करने के लिए मिला है, बुद्धि में पकड़ के नहीं रखो। ये आपका शरीर भी आपको पार्ट बजाने के लिए मिला है, इस्तेमाल करने के लिए मिला है, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला है, तो इस शरीर को भी क्यों पकड़ के रखें? बहुत बड़ा अभिमान है, ये अहंकार है हर एक चीज को पकड़ना। तो निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, सब कुछ बुद्धि से छोड़ देना और बाबा को पकड़ना बुद्धि में, यही है निरअहंकारी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं, सर्वस्व त्यागी जो होते हैं वो अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सन्यासियों ने समझा कि संसार त्याग दो, घर बार त्याग दो, परिवार त्याग दो और जंगल में चले गए दुखी करके परिवार को। अगर त्यागना ही था तो बनाया क्यों? आपको लगा कि संसार झंझट है तो उसमें गए ही क्यों? अभी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें सुख दो, उन्हें शांति दो, उन्हें संतुष्टि दो। संसार आपने रचा है तो परिवार आपकी जिम्मेवारी है, उनसे भाग नहीं सकते। और किसी की बद्दुआ लेकर आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। आप हमेशा इस बात को बुद्धि में याद रखना, क्योंकि आपने जो विकास का रास्ता चुना है वो रास्ता किसी की बद्दुआओं को बनाकर चुना है। किसी को दुख देकर आप विकास करने की सोच रहे हो, किसी को दुखी बनाकर अपनी उन्नति करने की सोच रहे हो, उनका क्या कसूर है जो आप उन्हें दुखी बना रहे हो? समझ की बात है। तो जो रास्ता चुनते हैं, सर्वस्व त्याग करते हैं, वो बुद्धि से किया जाता है। ईश्वर ने आपको जहां रखा है, बाबा ने आपको जहां रखा है, वहां स्वर्ग बनाओ। अपने परिवार को छोड़कर उन्हें दुखी करके दुनिया में स्वर्ग बनाने निकले हो, कहां से बनेगा? एक परिवार को, चार लोगों को, छह लोगों को आप सुख नहीं दे सकते, तो पूरे विश्व का स्वर्ग कैसे बनाएंगे आप? और बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम स्वर्ग बनाने वाले हैं, मास्टर रचयिता है। ताकत है तो चार लोगों के परिवार को स्वर्ग बना के दिखाओ। बाबा कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार संभाल के पुरुषार्थ करो, छोड़ के पुरुषार्थ नहीं करो। तो जो त्याग करना है वो बुद्धि से करना है। बुद्धि से जिसने त्याग किया उसे रास्ता अपने आप मिलता जाता है। इंसानों को जिसने त्याग दिया, परिवार को जिसने त्याग दिया, वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि उन्हें दुखी करके रास्ता चुना है। इसलिए किसी को दुख नहीं दो। अच्छे कार्य का फाउंडेशन अगर दुख होगा, परेशानी होगी, भले वो किसी और की भी हो या आपकी हो, तो आपको लगता है अच्छा कार्य जिसे आप सोच रहे हो वो सफलता मिलेगी उसमें आपको? कदापि नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी के दुख पर आप अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप अपने सिर पर ताज पहनाना चाहते हो, किसी को दुख देकर कभी नहीं होगा। इसलिए जो ये जो ज्ञान है ना बाबा का, ये सब बुद्धि का ज्ञान है, और सभी ने इसको बाहर से किया, बाहर से लिया, वही फंस गए, क्योंकि कभी समझा ही नहीं ज्ञान को कि ज्ञान क्या चीज है। सब कुछ बाहर से करते गए, अंदर से जैसे के वैसे रहा। बाहर से व्हाइट कपड़े पहने, अपने को कभी अंदर से व्हाइट बनाया है, सफेद बनाया अंदर से? अंदर से जैसे के वैसे, बाहर से बैच लगाया। अंदर से कभी आत्मिक स्थिति का बैच लगाया है? सब बाहर से ही ज्ञान को उठाते चले और बाहर से ही करते चले, और बाबा ज्ञान दे रहा है अंदरूनी, जो बातें सिखा रहा है वह सब अंदर की। ये ज्ञान बाहरी नहीं है, दुनियावी नहीं है, ये ज्ञान अंदरूनी है, और देने वाला भी अंदर बैठा है। वो बाहर नहीं बैठा है, अंदर बैठा है, और अंदर बैठकर वो ज्ञान दे रहा है। इसलिए अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं कौन? सर्वस्व त्याग। कहाँ से करते हैं? बुद्धि से त्याग करते हैं। तो अपने को चेक करना, आप बुद्धि से त्याग करने वाले हो? आपकी बुद्धि इतनी शक्तिशाली बनी है जो आपने बुद्धि से सब त्याग दिया है? जिसके पास कुछ नहीं, वापिस वही बात, वो सदा सुखी है। जिसके पास कुछ है वो जितना है उस हिसाब से दुखी है। इसलिए बुद्धि में कुछ नहीं रखो सिवाय बाबा के, तो सदा सुखी रहेंगे, सदा शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। देखिए, सर्वगुण बाहर से नहीं आएंगे, बुद्धि से सर्वस्व त्यागी बनने के बाद सर्वगुण आ जाएंगे। तो अपने को चेक करो, आपके अंदर गुण कितने आए हैं, और अगर नहीं आए हैं इसका मतलब बुद्धि में कुछ है जिसके कारण गुण आपके अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर कभी चिंता देखी अंत समय में, कि क्या होगा यज्ञ का, कैसे होगा? क्यों चिंता नहीं देखी? क्योंकि पता था जिसका यज्ञ है वो चलाएगा। मुझे सोचना है मेरा क्या होगा, मेरे स्थिति का क्या होगा। मुझे यज्ञ के बारे में नहीं सोचना है। यज्ञ चलाने वाला जो बैठा है मेरे अंदर, वो सोचेगा कि यज्ञ का आगे क्या होगा। यह ब्रह्मा बाबा का सर्वस्व त्याग और उनकी निश्चय बुद्धि थी। और यहां बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जैसे उनको लगता है कि वही ईश्वर है। और बल्कि देखा जाए तो ईश्वर भी नहीं सोचता उतना, उससे भी ज्यादा सोचते हैं कि यज्ञ का क्या होगा, कैसे होगा, प्रत्यक्षता कैसे होगी, गली गली में सेंटर कैसे बनेगा, हर घर गीता पाठशाला कैसे बनेगी। बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको अगर सोचना है तो अपने बारे में सोचो, ये सब होने वाला है क्योंकि ये सब करने वाला बाबा है। आपकी स्थिति आपको बनानी, बाबा की प्रत्यक्षता बाबा खुद करेगा, गली गली में सेंटर बाबा खुद बनाएगा क्योंकि वो सेंटर उसके है, हर घर को गीता पाठशाला वो खुद बनाएगा क्योंकि हर घर उसका है। मतलब उसका जो कार्य है ना, वो सब करेगा, हर रूप से करेगा। आपको आपका कार्य करना है, वो है आपकी स्थिति, आपकी अवस्था, ब्रह्मा बाप समान बनने की अवस्था, ये आपका कार्य है। आप इसके बारे में सोचो, यही आपका कर्तव्य है, ना कि दूसरे के कर्तव्य के बारे में सोचो। ये जो प्रत्यक्षता से लेकर हर घर में सेंटर है ना, ये बाबा के कर्तव्य है, उसके बारे में आप नहीं सोचो। वो अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से पूरा करेगा, ये सब ड्रामा में नूंद है। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो, आप अपने अंदर गुण धारण करने की सोचो, आप सर्वस्व त्याग करने के बारे में सोचो। बच्चे नहीं करते। बाबा क्या कहते हैं, सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। अभी बाबा ने सर्वगुणों की चाबी आपको दी, मास्टर की, क्या है, सर्वस्व त्याग। बस सर्वस्व त्याग कर दो, सर्वगुण अपने आप आ जाएंगे, धारण करना नहीं पड़ेगा। आप गुण कहां से धारण करते हैं, इसको उसको देख के गुण धारण करते हैं। ये देखिए कितने गुणी हैं, वो देखिए कितने गुणी हैं। अभी उनके गुण की जितनी इंटेंसिटी है ना, तीव्रता है, उतने ही गुण आपके अंदर धारण होंगे और आएंगे। अगर देखना है ना, तो ब्रह्मा बाबा को देखो, शिव बाप को देखो कि यह कितने गुणी हैं, तो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे और 100% उतरेंगे। पर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर गुण लेने की कोशिश करते हैं। गुण तो अच्छा है गुण लेने का, पर उतने नहीं आएंगे जितने आप आशा करते हो। तो अभी आपको बाबा की दे रहे हैं कि सर्व गुण अगर धारण करने हैं, अपने अंदर लाने हैं, तो बुद्धि को खाली कर दो, बुद्धि से सारी बातों का त्याग कर दो, तो सर्वगुण अपने आप आ जाएंगे। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। जब तक आपकी बुद्धि में कुछ न कुछ है, तब तक आपको दूसरों के अवगुण दिखेंगे, तब तक दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे, अवगुण दिखेंगे। ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। बाबा कहते हैं ये उनके अवगुण न देखना, यह भी एक त्याग है। अभी उनके अंदर अवगुण है, आए कहां से, ड्रामा अनुसार। अगर ड्रामा अनुसार उनके अंदर अवगुण है, तो आप उनके अवगुणों को क्यों देख रहे हो, उनकी चर्चा क्यों कर रहे हो, लोगों में वो बातें क्यों फैला रहे हो, वो भी तो उनका ड्रामा है। रावण के अंदर अवगुण थे, कहां से आए, ड्रामा अनुसार ही तो आए ना। राम जी के अंदर गुण थे, कहां से आए, ड्रामा अनुसार ही तो आए ना। समझ की बात है। तो अगर ड्रामा है और किसी के अंदर अवगुण है ड्रामा अनुसार, एक दिन वो गुणी बन जाएगा, एक दिन वो गुणी बन जाएगा, ये आपको पता है। तो उनके अवगुणों को आप क्यों देख रहे हो, क्यों उनकी चर्चा कर रहे हो? बाबा देखे और बाबा उसके ऊपर शिक्षा दे अलग बात है, क्योंकि बाप है, बाप को सिखाना है। आप मत देखो एक दूसरे के अवगुणों को, अवगुण देखेंगे तो अवगुण ही आएंगे, गुण कभी नहीं आ सकते। गुण देखो, रावण के अंदर भी ड्रामा में गुण भरे हैं, अगर शास्त्रों में पढ़े तो। महाज्ञानी महापंडित कहा जाता है, इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था दुनिया में, तो उस गुण को देखो। इतना बड़ा शिव भक्त था जिसने समर्पण कर दिया। गायन है कि अपना एक सिर काट के, आंतड़े निकाल के, वीणा बना के, जैसे कि नवरस गायन की गायन है ना, तो उस समर्पण को देखो, वैसे आप बनो। तो दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। जहर के अंदर भी संजीवनी का गुण है, जिससे दवाइयां बनती है और जान बचती है। हर चीज में गुण है, पर आपको दिखे तो। अगर आप अवगुण देखना चाहते हो तो अवगुण देख सकते हो, मर्जी आपकी है। इस दुनिया में हर चीज को ड्यूअलिटी में बनाया गया है, समझने वाले समझे। हर चीज ड्यूअलिटी में बनी है, आपको जो देखना है वो आप देख सकते हो। इसी को ड्रामा कहते हैं जिसमें ड्यूअलिटी हो। क्या देखना है मर्जी आपकी। बाबा कहते हैं दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है, यह भी एक त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। दिख रहे हैं फिर भी नहीं देखना, यह त्याग है। आप अपने को चेक करना। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। बाबा कहते त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। कौन सा त्याग? दूसरों के अवगुणों को न देखना। लेकिन त्याग का अभ्यास होना चाहिए आपके पास। अब चेक करना, आपके पास त्याग का अभ्यास है? त्याग बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण। लौकिक में भी देखिए, आपकी लौकिक माता जी भी आपको गर्भ में बड़ा करने से लेकर त्याग करती आती है आपके बुढ़ापे तक, त्याग ही करती है। कभी वो खुद नहीं खाएगी लेकिन आपको खिलाएगी, त्याग ही तो है। त्याग जिनके अंदर है वो बाहर में दिखता है, लौकिक बातों में। ऐसे नहीं कि आज बाबा ने कहा इसलिए कल से एक दूसरे को चीजें देना शुरू करो, ये दिखावा होता है। त्याग दिल से होता है, जहां जरूरत होती है वहां आप देते हो, वो त्याग है। आप जरूरत को समझ के, समय को समझ के किसी और को प्रायोरिटी देते हो कि पहले आप, वो त्याग है। कोई शरीर से बूढ़े व्यक्ति आए, आप कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आपने उन्हें कुर्सी दी, आपको दिखा कि आपसे ज्यादा जरूरत उनको है, आप नीचे बैठ गए, ये त्याग है। त्याग को समझ लीजिए। जब परिवार में त्याग को समझेंगे तो वही त्याग समाज में और दुनिया में पहुंचेगा। परिवार में त्याग समझना बहुत जरूरी। किसी किसी घर में पूरा भोजन नहीं है। तो माता बच्चों को कहती कि मैंने खा लिया, आप भोजन कर लो, और बच्चों को पेट भर के खिलाती है और वो खुद पानी पी के सो जाती है। ये त्याग है, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। त्याग में रिस्पेक्ट और रिगार्ड बहुत ज्यादा होता है दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति भी होता है। रिस्पेक्ट और रिगार्ड के बिना त्याग नहीं आगे आएगा, सम्मान की बातें हैं। तो बाबा कहते त्याग के अभ्यास को चेक करो, अपनी नींद छोड़कर परिवार में जरूरत है तो उनके लिए जगना यह त्याग है। त्याग की वैल्यू होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए। वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। त्याग एक बार करे या पूरी आयु करे, त्याग त्याग ही होता है। बहुत बार कैसे होता है, किसी ने आपके लिए त्याग किया एक बार 10 बार तो आपकी अपेक्षा होती कि पूरी आयु मेरे लिए करे, ऐसे नहीं हो, समझ की बात है। आज विश्व सकाश देने आप सभी बैठते हो, यह भी तो त्याग है कि बाबा के लिए और विश्व के लिए आप कर रहे हो। आप अपना समय बाबा की सेवा में और विश्व सेवा में लगा रहे हो, त्याग है। उसी समय में आप मौज मस्ती कर सकते हो, खा पी सकते हो, घूम फिर सकते हो, अपनी निजी जीवन जी सकते हो, लेकिन वह समय आप बाबा के लिए और विश्व के लिए लगा रहे हो, त्याग ही तो है। जब जो एनर्जी जो समय आप अपने लिए ना लगाते हुए किसी और के लिए लगा रहे हो, फिर उसमें एक व्यक्ति हो, सारी विश्व हो या बाबा हो, वो सब त्याग है, सभी त्याग है। और त्याग का फल बहुत बड़ा होता है। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग, बॉडी कॉन्शियसनेस से भी बाहर निकले, वो है सर्वस्व त्यागी। शरीर को पकड़ के ना बैठे, अपने को चेक करो, आपके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस कितना है, तो आपको पता चलेगा देह के भान का त्याग कितना किया है। कभी कभी है ना, स्त्री के कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, स्त्री के पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ये पहनते पहनते है ना, कब इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है कि अगर कपड़ा थोड़ा मैला हो तो पहना नहीं जाता, स्त्री बिना स्त्री का कपड़ा पहना नहीं जाता, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। आत्मिक स्थिति में आने के लिए इसे पहना है, और इसे पहनते पहनते कब गहरा बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस को निकालते समय, उसको निकालने के लिए आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको चेक करना, कहीं उनमें तो नहीं फंस रहे हो। अगर उनमें फंसेंगे तो वापस वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएगा। जैसे बहुत से बच्चों ने संसार छोड़ दिया और अध्यात्म में आके अपना संसार बना लिया, तो संसार कहाँ छोड़ा, वही बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस को निकालने के लिए जो एक्टिविटी करने लगे, वही एक्टिविटी कब आदतें बन के रह गई और उनके बिना रह नहीं सकते ऐसी हालत हो गई, पता नहीं चला, वही तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर ही चाहिए, वो भी अच्छी वाली चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस है, योगी का बॉडी कॉन्शियसनेस चेक करना है ना, तो बहुत अच्छे धुले कपड़े पहन के आएगा ना, इस्त्री के कपड़े, कीचड़ उड़ा दो बॉडी कपड़े पर, देखो उसकी स्थिति को, पता चलेगा कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है। घर को, कमरे को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, पर अगर कहीं पर कचरा है ना, तो अगर दिल बेचैन हो रहा है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस है। थोड़ा समय आगे जाइए, इस दुनिया में कचरा ही कचरा होने वाला है। स्वच्छ रखिए, अच्छा रखिए, पर इतना भी आप उस आदत के प्रभाव में नहीं आए कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। थोड़ा समय आगे बढ़ने दीजिए, देखिए रास्तों पर कैसे लाशें दिखेंगी, क्या क्या होने वाला है देखिए बस, कैसे बदबू आएगी देखिए बस, आगे चल के नेचुरल कैलामिटीज क्या क्या करेंगी, बीमारियां कितनी बढ़ेंगी। बाबा कहते हैं सभी अच्छाई की तरफ जाओ, सभी करो, बट आप उस अच्छाई में अटको नहीं, कि आपके उस हिसाब से अगर कोई चीज ना हो तो आपका दिल बेचैन हो जाए, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो अपने कॉन्शियसनेस को चेक करो, देह का भान कहाँ तक त्याग दिया है। परीक्षा अचानक से होती है और उस अचानक की परीक्षा में ही आपकी स्थिति पता चलती है। अभी बताकर किसी के कपड़े मैले कर दिए वो स्थिति में जरूर रहेगा, लेकिन अचानक से किसी के कपड़े मैले कर दिए, फट गए, तो आपको स्थिति पता चलेगी। ये सब जाना है, संभालो, लेकिन उसके अधीन नहीं हो जाओ, क्योंकि अधीन हो जाएंगे आपका मन दुखी हो जाएगा। वो कपड़ा फटा मैला हो गया तो मन दुखी हो जाएगा, मन दुखी आत्मा दुखी, फिर पाया क्या आपने, इतना समय पुरुषार्थ करके पाया क्या। तो आपकी ऐसी कोई आदत अध्यात्म में आने के बाद वो इतनी गहरी आदत ना बने जिससे आप खुद परेशान हो जाओ। चेक करो अपने, बड़े बड़े लेक्चरर कहते हैं आध्यात्मिक कि एसी के बिना हमें स्टेबल रहना चाहिए, लाइट चली जाए फिर भी स्थिर रहना चाहिए। और जब उनके पास लाइट चली जाती है और खुद जब उस सिचुएशन में आते हैं तो स्थिति हिल जाती है। पंखा हिलाने के लिए चार लोग खड़े हो जाते हैं तो स्थिति गई कहां। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो अपने को बड़ा समझते हैं, जो अपने को बड़ा समझता है वो कभी बड़ा होता नहीं, क्लियर बात है, बड़ा समझते हैं और अपने ज्ञान में कहते हैं हमारी स्थिति सदा स्टेबल रहनी चाहिए, क्लास में कहते हैं, पर उसी क्लास में उनके हिसाब से अरेंजमेंट ना होना, व्यवस्था ना होना, तो स्थिति कहाँ और क्लास कहाँ। दिखता है चेहरे से, पता चलता है। बाबा कहते हैं साधारण रहो, बाहरी रूप से, फिर पता चले आपकी स्थिति क्या है। तो देह के भान को त्याग दो, कितना देह भान पकड़ेंगे, देह भान से नुकसान ही होने वाला है, आप दुखी ही होने वाले हैं। इसलिए ज्ञान में आने के बाद जो जो आपकी आदतें हो गई हैं, कहीं वो आपके संस्कार तो नहीं बने हैं, चेक करना, वही संस्कार आपको परेशान करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान संस्कारों को धारण करो, और जो संस्कार आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो संस्कार ब्रह्मा बाप समान नहीं है। ब्रह्मा बाप समान जो संस्कार होंगे वो सुख देंगे सदा, आपको भी देंगे और आपसे दूसरों को भी देंगे। इस बात को समझो, बहुत गहरी बातें हैं। सोल कॉन्शियसनेस का स्टडी करते करते कब सोल कॉन्शियसनेस के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए ये भी पता नहीं चला। ऐसी अवस्था हो गई है सभी की, समझ की बात है। लाल लाइट ही चाहिए योग करने के लिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। गीत ही बजना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। कमेंट्री ही लगानी चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। चेयर ही चाहिए नीचे बैठने के लिए, अच्छा कुछ बिछाने के लिए चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। व्हाइट कपड़े ही चाहिए, बैच लगा के ही चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। सामने बहुत बड़ी ट्रांसलाइट चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस है। ये सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। हो अच्छा है, बेहतर है, नहीं हो तो भी योग लगे आपका, आपकी स्थिति कायम रहे। अंत समय में ये सब कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं किसके ड्रामा में अंत समय में क्या है। आप इस आशा में नहीं रहना कि आपके ड्रामा में सब कुशल मंगल होगा अंत समय में, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि कुशल मंगल रहेगा तो हम अच्छे से योग कर पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो क्या याद नहीं करना है बाबा को? तो बहुत से बच्चे इसी आशा में हैं कि बाबा है माना हमारी जीवन में अंत तक सब कुशल मंगल रहेगा। बाबा कहते हैं इसके लिए आप कुशल मंगल रहो स्थिति में बाबा के साथ, फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि सब कुशल मंगल रहेगा। लेकिन आपका निश्चय किसी दिशा में, समर्पण किसी दिशा में, अब सदा हिले डुले रहते हो, कहां से कुशल मंगल रहेगा आपको? बाबा कहते हैं आपको मेरे ऊपर कोई निश्चय नहीं है, ना आपकी सच्ची दिल है, ना आपका समर्पण है, और आप आशा रखते हो कि सब कुशल मंगल रहे, कहां से रहेगा? तो समझो इस बात को, आपके साथ उतना ही कुशल मंगल रहेगा जितना आपका निश्चय है, जितनी आपकी सच्ची दिल है, और जितने आप समर्पण बुद्धि हो, उससे न कम रहेगा न ज्यादा रहेगा। पुरुषार्थ एक बाजू में है और ये तीन बातें एक बाजू में है। इसलिए बाबा कहते हैं देह के भान का भी त्याग करो और मैं जो शिक्षाएं दे रहा हूं उसे धारण करो। तो सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग, सदा सोल कॉन्शियसनेस अवस्था। बाबा ने जैसे रखा है, जहां रखा है, उसे स्वीकार करें। यह है देह का भान त्याग करने वाले। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, अपनी अवस्था को चेक करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और अंत का समय है तो बाबा अभी भी कहेंगे हो सके तो बॉडी कॉन्शियसनेस निकालने की कोशिश करना, हो सके तो करना, वरना ड्रामा, मर्जी आपकी। अच्छा, ओम शांति।